मेरे अजीज साथियों नमस्कार। आज 25 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज भी लाइफ मैनेजमेंट में मेरा मन कर रहा है कि कुछ अतीत की स्मृतियों को ही आधार बनाकर बात की जाए, जैसा कि मैं इससे पहले के दो लाइफ मैनेजमेंट में करता आ रहा हूं। तो मित्रों, आप सबसे एक तरफा अनुमति मैं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं कुछ स्मृतियों की डोर पकड़ कर ही कुछ बातें कहने की कोशिश करूं। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग गांव में रहते थे, ये बात है लगभग 1970-72 के आसपास की, और मुझे उस समय के अपने जीवन की घटनाएं बहुत अच्छे तरीके से याद है, काफी कुछ याद है। मैं उन्हें रैलिश भी करता हूं, याद करके अभी जीता भी हूं, और सच पूछिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ समय के लिए मैं अपने उस कम उम्र वाले दौर में पहुंच जाता हूं और उसी तरह की अटखेलियां और नादानियां और इत्मीनान और ढेर सारी चीजें एंजॉय करने का। तो देखिए, सबका अपना अपना तरीका है, कोई किसी में, तो मुझे इसी में बहुत मजा आता है। तो पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि पिछली चीजें बड़ी तेजी से याद आने लगती हैं, लेकिन मैं इस मायने में खुशकिस्मती अपने को समझता हूं कि मुझे ज्यादातर अच्छी चीजें याद रहती है। ऐसा नहीं कि बुरी चीजें घटित नहीं हुई हैं, हुई है, काफी कुछ हुई है, शायद संख्या की दृष्टि से उन्हीं की संख्या ज्यादा भी हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, ये ईश्वर की कृपा है, आप सबकी शुभकामनाएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है कि जो बेहतर चीजें हैं वही मेरे दिमाग के खजाने में मौजूद रह गई हैं। दोस्तों, उस समय जब हम लोग गांव में रहते थे तो मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, संबंधी आते थे, हर तरह के लोग आते थे, शादी ब्याह में आते थे, वैसे भी रहने के लिए कुछ समय के लिए आ जाते थे। तो हमारे एक संबंध रिश्तेदार ही मैं कहना चाहूंगा, मैं संबंध का नाम नहीं लूंगा, उनकी एक घटना मुझे याद आ रही है। होता क्या था कि वो दौर डाइनिंग टेबल का दौर नहीं था कि डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया, सब बैठ गए और भोजन कर रहे हैं। वो दौर बकायदे जमीन पर बैठकर भोजन करने का होता था कि बकायदे आसन लगाया जाता था और उस आसन पर जो अतिथि हैं वो बैठते थे, फिर बकायदे उनकी थाली परसी जाती थी, बकल में गिलास और लोटा रखा जाता था और उनको ला ला कर चीजें बीच में दी जाती थी, है ना। एक व्यक्ति खड़ा रहता था, हम लोग खड़े रहते थे और देखते रहते थे कि कौन सी चीज खत्म होने वाली है, और दो तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता था। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा उस समय जरा सा पता लगेगा कि उस समय किस तरीके का था ना, इसलिए मैं जरा विस्तार से बता रहा हूं। तो मित्रों, खड़े रहना पड़ता था और हम लोग देखते रहते थे कि कौन सी चीज अब खाने में कम पड़ रही है, लेकिन इससे पहले कि वो चीज खत्म हो, मतलब आपको टाइमिंग इस तरीके से रखनी पड़ती थी कि चीज के खत्म होने से पहले ही आपको वह चीज ला करके उन्हें परस देनी पड़ती थी, और अगर उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ गई तो बुरी बात मानी जाती थी, और अगर उनको मांगना पड़ गया तब तो इससे ज्यादा अपमानजनक कोई बात हो ही नहीं सकती थी। तो इतना परफेक्ट टाइमिंग उसमें चलता रहता था। फिर दूसरी बात जो थी वो ये थी कि अगर वो मना कर रहे हैं और उनके एक बार मना करने पर आप भी मान गए तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, आपने उनकी इज्जत की ही नहीं। वो नाना कहते रहेंगे और आपको हाँ हाँ करते रहना है, जैसे प्यार मोहब्बत की चीजों में होता है ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, कुछ उसी तरह का मामला वहां था कि वो मना करेंगे आपको फिर भी देना है, वो मना करेंगे आपको फिर भी देना है, और आप जितना जबरदस्ती उनको जितना ज्यादा भोजन खिला पाएंगे ये माना जाता था कि आपने उतना अधिक उनका सम्मान किया है, उनको इज्जत बख्शी है, ये सब होता था। तो हम लोग तो उस दौर के हैं और ये सारी चीजें सीख भी गए थे और उसी तरह से व्यवहार में लाते भी थे। तो मित्रों, उसमें एक बड़ा विचित्र किस्म का रिवाज था, और कुछ समय पहले ही, लगभग साल भर पहले की बात होगी, जब फिर से मेरी मुलाकात उनसे हुई तो मैंने उनको उसी पैटर्न पर पाया। हालांकि अब उम्र उनकी काफी हो गई है, स्वाभाविक है कि जब मैं 70 की बात बता रहा हूं और 70 में भी इन्हीं की बात बता रहा हूं, इसीलिए मुझे ये घटना याद भी आ गई। होता यह था मित्रों कि जैसे ये माना जाता था कि आपने भोजन परस दिया है, जैसे रोटी ले लीजिए, ज्यादातर रोटी के मामले में ही होता था, तो अगर उन्होंने सारी रोटी खत्म कर दी, या यूं कह लीजिए कि यदि थाली में उन्होंने जूठा नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति भुक्खड़ है। भुक्खड़ी शब्द मैं कह रहा हूं, बहुत ही भुक्खड़ है, बेकार का आदमी है, सब कुछ खा गया, इसको कोई तमीज ही नहीं है। तो अब आप समृद्ध व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, तमीज वाले कैसे कहलाएंगे? तो उसका उपाय यही था कि आप अपनी थाली में भोजन छोड़िए, पर्याप्त भोजन छोड़िए, सब चीजें थोड़ी थोड़ी छोड़िए। सोचिए, और हालत यह होती थी, आश्चर्य होता था कि पेट भर चुका है और हम रोटी डाल रहे हैं, वो मना भी नहीं कर रहे हैं, रोटी डाल रहे हैं। रोटी डालने के बाद बिना उस रोटी को टच किए उठ जाते थे, यानी कि पेट भर चुका है, अब मतलब ये नहीं कि कोई नाराजगी से उठते थे, उठ जाते थे, पेट भर चुका है, भोजन संपन्न हो चुका है, अब आप थाली उठा करके ले जाइए, और वो बेचारी रोटी ज्यों की त्यों अनटच्ड उसमें रखी हुई, फूली हुई सी रोटी। अब आप उस रोटी का क्या करेंगे? चलिए कोई अन्न बर्बाद नहीं होता है उस तरीके से, तो आप कुत्तों को डालेंगे या जो कुछ भी करेंगे। तो मित्रों, ये एक रिवाज था, बड़ा विचित्र किस्म का रिवाज था। मतलब सच पूछे तो मेरा बाल मन उस समय भी इसे समझ नहीं पाता था, और समझने से ज्यादा इसको पचा नहीं पाता था कि यार ये कौन सी शान की बात हो गई कि आप जानबूझकर जूठा छोड़ रहे हैं, जबकि हम लोगों को सिखाया गया था हमारी दादी माँ दादा कि जूठा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जूठा छोड़ने का मतलब है अन्न देवता का अपमान करना। तो अब आप देखिए कि एक ही समय में ये दो थ्योरी चल रही है, जूठा नहीं छोड़ना है, अन्न देवता का अपमान करना होगा, और मन की बात के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि जूठा छोड़ना बंद कीजिए, और दूसरी तरफ जूठा छोड़ना शान की बात हो रही थी। तो कभी कभी परंपराओं में, जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, कि बड़े विचित्र किस्म के विरोधाभास पैदा हो जाते हैं। अब इस परंपरा में आप देखें कि दो चीजें हैं, एक तरफ तो आप धर्म को ले लीजिए, जब हम इसे अन्न देवता के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं जूठा छोड़ने को, और दूसरी तरफ आप इसे देखें जब हम इसे सामाजिक शान सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं, और इन दोनों में कोई मैच नहीं है। दोनों मैच क्या मतलब, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी है, एकदम विरोधी है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए कि आप इन दो परंपराओं में रह रहे हैं और दोनों परंपराएं आपके सामने मौजूद हैं। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है, होता ही है, और मैं जानता हूं कि जो हमारा ग्रामीण जीवन है, जो लोक जीवन है कहना चाहिए, उन लोक जीवन में तो ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। यूं कह लीजिए कि कदम कदम पर यही होता है कि परंपराएं कुछ कह रही है लेकिन तार्किक मस्तिष्क कुछ और कह रहा है। जीवन के प्रति जो एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण होना चाहिए वह बिल्कुल अलग बात कह रहा है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण कहेगा कि नहीं, अनाज छोड़ा नहीं जाना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। चलिए धार्मिक दृष्टिकोण आप छोड़ दीजिए, इसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन शान सामाजिक प्रतिष्ठा इज्जत मूछ की ऐठन ये कह रहे कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप ऐसे धर्म संकट में फंसे तो यह तो देखिए आपके ऊपर है कि आपके अंदर कौन सा तत्व प्रोमिनेंट है, परंपरावादी तत्व या उपयोगितावादी तत्व, या यूं कह लीजिए कि इमोशनल पार्ट या कि फिर लॉजिकल पार्ट। अगर लॉजिकल पार्ट प्रबल है, आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि नहीं, रोटी छोड़ी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। आप लॉजिकली ये भी कह सकते हैं कि वो रोटी बर्बाद थोड़ी जाती है भाई, आप कुत्ते को डाल दीजिए, गांव में कुत्तों की कमी होती नहीं है, गाय को डाल दीजिए, गाय को हालांकि जूठी रोटी हम खिलाते नहीं, चलिए बैल को खिला दीजिए, मतलब और भी बहुत से जीव जंतु होते हैं उनको खिला दीजिए रोटी, तो बर्बाद तो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, शान भी निभ गई और वो भी बात रह गई, लेकिन फिर जब आप इसे तर्क पर सोचेंगे तो आपको फिर ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा कि अगर गाय को रोटी खिलानी है, अगर कुत्ते को रोटी खिलानी है, तो थाली की ही जूठी खिलानी क्या जरूरी है? अलग से उनको निकाल करके उनके लिए रोटी बना करके रख दी जाए? मेरे दादाजी ये करते थे हमेशा कि वो गाय की एक अलग रोटी बनवाते थे, कुत्ते की एक अलग रोटी बनवाते थे, और कौवे की अलग रोटियां बनवाते थे। दो रोटियां खुद खाते थे और तीन रोटियां ये अलग से निकाल करके खाना खाने के बाद आते थे, उनके लिए रख देते थे। शाम को जब गाय लौट आती थी तो गाय को खिला देते थे। कुत्ते तो उनके आने का इंतजार ही करते रहते थे, बाहर बैठे हुए तो कुत्ते को डाल देते थे और छत के ऊपर मतलब छप्पर के ऊपर रोटियां के टुकड़े कर करके डाल देते थे, तो कौओं की जमात आ जाती थी, वो अपना खा जाते थे काऊ काऊ करके। तो मित्रों, अब आप देखिए कि एक ही युग में ये दो चीजें हैं। सवाल यह है कि हम किसको अपनाएं। मुझे लगता है मित्रों कि हम अब जिस युग में आ गए, देखिए तो ये तो मैं 1970 की बात बता रहा हूं, 1970 के आसपास समाज बहुत दूसरा था। नो डाउट कि उस समय के समाज में जो लोग थे, जब वो आज इन चीजों को देखते हैं तो उतना खराब उनको नहीं लगता है, बहुत लोग उनके पालन उनका पालन भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो लॉजिकल है, जो वैज्ञानिक चेतना से संपन्न है, जो जीवन के प्रति एक यथार्थवादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखती है, उन्हें चाहिए कि वो दो काम करें। पहला तो यह है कि इस तरह की जो भी परंपराएं वो देखते हैं तो उन परंपराओं के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिहाद छेड़ दीजिए, आप कोई संघर्ष छेड़ दीजिए, युद्ध छेड़ दीजिए, आक्रमण कर दीजिए, लेकिन लोगों के अंदर चेतना पैदा करने की कोशिश कीजिए। उनको बताइए कि सच क्या है, गलत क्या है, लोक जीवन में इसकी बहुत जरूरत है। और दूसरी बात, कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम अपने जीवन में उनका अनुपालन न करें, हम उन्हें दोहराएं नहीं, कम से कम अपनी जिंदगी से तो दूर रखें, क्योंकि अगर हमने भी इसे किया तो आने वाली पीढ़ी हमें देख करके वह भी करेगी। और अगर हमने ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि पुरानी पीढ़ी को तो आप न समझा पाए, लेकिन आपने जो अब ब्रेक कर दिया है तो आने वाली पीढ़ी के पास अब देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये मान करके चलिए कि आपकी ब्रेक करने का मतलब है कि उसका खत्म हो जाना, उसकी आप यूं कह लीजिए कि प्राकृतिक मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गया। और ये भी कम बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि समाज के विकास में तो सदियों लग जाते हैं दोस्तों, यहां तो केवल हम कुछ दशकों की ही बात कर रहे हैं। तो मित्रों, आज मैंने कुछ ऐसे आपसे अतीत की बात की है जिसे आप अतीत मोह भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।